दुनिया के अंदर जो पहला कत्ल हुआ था, साक अहमद जितने कत्ल होते रहेंगे तो वो जिसने पहला कत्ल किया था उसको भी इसका गुनाह मिलता रहेगा। तो जिस तरह टेक्नोलॉजी जैसे बल्ब या बिजली, इस तरह की जो इजादात हुई है वो गैर मुस्लिमों ने की है, लेकिन इससे मुसलमान भी मुस्तफीद हो रहे हैं, तो इसके बारे में क्या हुक्म है, आप क्या इरशाद फरमाएंगे?
पहला कत्ल जो है वो काबिल ने किया था हसद की बिना पर, तो अब क़यामत तक जितने कत्ल होंगे उसका गुनाह उसको मिलेगा। तो अब ये कह रहे हैं कि जदीद दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लोग चीज़ें ईजाद करते हैं। अब इनका सवाल अधूरा था, मिसाल के तौर पर किसी ने कोई चीज़ ईजाद की, उसका इस्तेमाल जो है वो बुरा होने लगा और करते रहे, तो क्या ये ईजाद करने वाले के लिए हुक्म साबित होगा? इसी तरह गैर मुस्लिम ने कोई चीज़ ईजाद की है तो क्या उसको इसके ईजाद करने का फ़ायदा होगा कि जबकि उसका अच्छा इस्तेमाल भी हो रहा है, क्या होगा इस मामले के अंदर?
देखें, पहली बात यानी ये कह रहे थे कि गैर मुस्लिमों ने कोई चीज़ें ईजाद की हैं जैसे बल्ब वगैरह, असल में इनका मकसूद ये था कि क्या उनको सवाब मिलेगा नहीं मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, देखें हमारे यहाँ एक आम तस्वुर और एहसास कमतरी इस चीज़ का पैदा किया जाता है कि गोया के मुसलमानों ने कुछ ईजादात किया ही नहीं है, ईजादात की ही नहीं है, ये जहन के अंदर तस्वुर है, हालांकि ये बिल्कुल बातिल बात है। मुसलमान पहले भी ईजादात करते रहे, चाहे वो मेडिकल साइंस के एतबार से हो, जिसको पहले तिब कहा जाता था, अब जदीद अल्फाज में उसको मेडिकल साइंस कह दिया गया,
अब तिब हकीम के साथ खास
तिब हकीम के साथ हो गई, वरना तिब के अंदर जो बड़े बड़े कारनामे अंजाम देने वाले साइंसदान हैं उनका नाम जो है वो मुसलमान है, बड़े बड़े नाम मुसलमानों के हैं। इसी तरह कई ईजादात हैं कि जिसमें इब्तिदा करने वाले मुसलमान हैं। इसी तरह मईशत होती है, माशियात होती हैं, उसके अंदर बड़े बड़े जो आजकल फार्मूले चलते हैं उनमें से कई फार्मूले जो है वो मुसलमान देने वाले हैं। बजट का तस्वुर पेश करने वाले इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह हैं। इस तरह बहुत सारे मामलात हैं कि जो मुसलमान देने वाला है, यूनिवर्सिटी का तस्वुर देने वाले मुसलमान हैं, इसके यूनिवर्सिटी से डिग्री जारी करने का तस्वुर देने वाले मुसलमान हैं, यानी बहुत सारी इसके ऊपर हमारे बुजुर्गों ने, बल्कि आज के दौर में कई किताबें लिखी जा रही हैं कि जिसमें इस बात को बताया गया है कि ये नहीं है कि मुसलमानों की इजादात नहीं है, कसीर इजादात मुसलमानों की है जो बुनियाद बनी है आगे यूरोप की मुख्तलिफ इजादात की, उनको सामने रखकर मजीद इजादात की गई, और अब भी कई मुसलमान ऐसे हैं कि वो सामने नहीं आ पाते, वरना हकीकतन उनकी इजादात बहुत सारी मौजूद होती हैं। पहली बात ये, तो इसलिए एहसास कमतरी इस बात का जहन से निकाल देना चाहिए कि मुसलमान कुछ ईजाद नहीं करते, हालांकि ईजादात के मैदानों में मुसलमानों का बहुत बड़ा नाम है। बिलफर्ज चले जो ईजादात का मामला है दुनिया के एतबार से, अगर कुफार की ईजादात हैं तो देखें जो सवाब है वो आखिरत का मामला है। दुनिया में अगर किसी ने कोई अच्छा काम किया है तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया ही में उसको उसका बदला दे देगा। मुसलमानों में कोई ऐसा है कि जिसको जिसका ईमान बाद में सलामत नहीं रहता तो अल्लाह तबारक व तआला दुनिया के अंदर उसको बदला अता फरमा चुका। तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े अल्फाज में इस बात को बयान फरमा दिया कि ये जो कुफार की तरक्की, इनके माल, इनकी औलादें, इनकी कसरत जो है, ये तुम्हें ताज्जुब के अंदर ना डाले, तुम्हें उजब के अंदर ना डाल दे कि तुम उसके अंदर जो है वो उनसे मुतासिर हो जाओ, ऐसा तुम्हारे लिए नहीं होना चाहिए। तुम्हें आखिरत की तरफ ये तवज्जो करनी है, दुनिया के अंदर मेहनत करनी है, उससे मना नहीं किया गया, तैयारी का हुक्म दिया गया है दुनिया के अंदर मुख्तलिफ चीजों का, लेकिन असल जो है वो आखिरत की तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो बात यह है कि सवाब का जो मामला है वो आखिरत से ताल्लुक रखता है, और उसके लिए कुरान पाक में एक जगह नहीं, कई मकामात पर अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात की वजाहत फरमा दी है। और ये सिर्फ कुरान पाक में नहीं, बल्कि जो जो आखरत को मानने वाले मजाहिब हैं, यानी आसमानी मजाहिब जो अंबिया किराम अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं, उनके अंदर इस बात की सराहत मौजूद है कि आमाल का फायदा उसी सूरत में हो सकता है जबकि ईमान हो, और ईमान उसी सूरत में हो सकता है कि जब आप अल्लाह तबारक व तआला के तमाम अंबिया किराम अलैहिस्सलाम पर, उसकी तमाम किताबों पर ईमान लेकर आए। अगर आपने अल्लाह के किसी भी एक नबी का इंकार कर दिया, उन पर ईमान लेकर नहीं आए, तो आप ईमान वाले नहीं। तो ईमान लाने के लिए बुनियादी शर्त नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जात पर ईमान लाना है। आप पर ईमान लाएगा तो बंदा मोमिन होगा, वरना मोमिन हो नहीं सकता। तो अब कुफार ने जो इजादात की हैं, अल्लाह तबारक व ताला की जो उन पर नेमतें हैं, अगर दुनिया के एतबार से नेमतें देखी जाएं तो अल्लाह ने उनको सलाहियत दी, अल्लाह ने जिस्म दिया, अल्लाह ने कुव्वत दी जिसकी बुनियाद पर वो बनाया। तो अब सिला क्या करना है, यानी अल्लाह की उस नेमत का ही बदला नहीं दे सकते कि जो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर की है। जब रब तबारक व तआला दुनिया का भी मालिक है, आखिरत का भी मालिक है, और उसने ये शर्त करार दी है कि अमल कोई भी हो, کسی بھی طرح کا ہو، چاہے دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہو، وہ اسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا، اس کا فائدہ قیامت کے دن بندے کو اسی صورت میں حاصل ہوگا جبکہ وہ ایمان لے کر آیا ہوا ہو. اگر وہ ایمان والا نہیں تو اس کی ساری کی ساری نیکیاں جو ہے وہ ذرہ ذرہ کر دی جائیں گی، ریزہ ریزہ کر کے بکھیر دی جائیں گی. تو اس لیے اگر کسی نے اس طرح کی ایجادات کی جس سے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے، نفع پہنچ رہا ہے، تو اس نفع پہنچنے سے اس کو آخرت کے اندر کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا. تو اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اور وہاں پر جو معاملہ تھا وہ گناہ کا معاملہ تھا، گناہ کو کسی نے ایجاد کیا ہے تو اس گناہ کا بدلہ اس کو ملتا رہے گا. ہاں اب وہ چیز جو ایجاد کی ہے وہ دیکھی جائے گی کہ اب وہ فائدے کے لیے بھی استعمال ہو سکتی تھی. چھری ہے، چھری کسی نے ایجاد کی تو وہ چھری جو ہے اس سے مرغی بھی کاٹی جاتی ہے، آلو بھی کاٹا جاتا ہے، سبزی بھی کاٹی جاتی ہے اور انسان کو قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ بنانے والے کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، استعمال کرنے والے پر ہے. لیکن بناتا ہی ایسی چیز ہے، شراب بناتا ہے، ہیروئن بناتا ہے، نئے قسم کا کوئی نشہ نکالتا ہے کہ جس سے ہوتا ہی نشہ ہے، تو پھر جو استعمال کرے گا گناہ اس کو بھی ملے. ٹھیک.